आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
चाची जी।
अर्जुन, तुमने रिमिटली से जो पैसे भेजे थे उन्होंने तुम्हारे चाचा जी के जन्मदिन को बहुत खास बना दिया। धन्यवाद।
कोई समस्या नहीं। आपने परिवार की चाय बनाने की गुप्त विधि बताने का जो वादा किया था उसके बारे में क्या विचार है?
बिल्कुल। अच्छा, चाची की चाय। सबसे पहले हम पानी उबालेंगे, अब लौंग, इलायची, अदरक और चाय की पत्ती डालेंगे। और हाँ, मेरी सीक्रेट सामग्री डालना मत भूलना।
आह, कोई भी चाची जी जैसी चाय नहीं बनाता। जब आप एक दूसरे से दूर हो तो पास रहें। रेमिटली ऐप से भारत पैसा भेजें।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बराल। आइए, आज आपकी मुलाकात करवा रही हूं सिडनी स्थित प्रोफेसर वीना सहजवाला से, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया डे पर मिलने वाले सम्मानों में मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी AO। ये सम्मान उन्हें मिला है सस्टेनेबल मटेरियल्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट में एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर की हैसियत से। वीना जी 2008 से सेंटर फॉर सस्टेनेबल मटेरियल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। 2015 से वो साइंस 50-50 प्रोग्राम के लिए फाउंडर हैं। 2020 से वो हब लीडर हैं सस्टेनेबल कम्युनिटीज एंड वेस्ट हब, नेशनल एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड द एनवायरमेंट एंड वाटर। अलग अलग समय पर कई अवार्ड्स भी मिलते रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाज टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंजीनियर्स, ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट इनोवेटिव इंजीनियर्स, यूरेका प्राइज। उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि इंजीनियर तो सभी बनते हैं, लेकिन उसमें ये जो इन्वेंटर की बात आई उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो बताती हैं।
देखो, अभी जब मैं मुंबई में थी वहां पे तो मुझे जैसे बोलते हैं साइंस में तो इंटरेस्ट था ही। और उस टाइम खैर मेरी मम्मी डॉक्टर है और मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो मुझे ये तो बहुत क्लियर था मन में कि मुझे साइंस तो अच्छा लग रहा है। पर उस टाइम ये नहीं मालूम था कि ठीक है, अगर साइंस बोलो या इंजीनियरिंग बोलो क्या उसमें जैसे फर्क होती है। पर मुझे ये हमेशा मालूम था कि मैं तो अपने मम्मी की तरह डॉक्टर तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे बताइए कि मुझे ह्यूमन बॉडी का इंजीनियरिंग नहीं अच्छा लगता।
आपको बड़े बड़े मेटल इंजीनियरिंग,
वही मशीनरी और जिन चीजों में जैसे बोलते हैं ना बहुत आवाज और एकदम जैसे चीज बनती है उसमें मेरा बहुत फैसिनेशन था।
तो आप मशीनों में जान डालने की कोशिश करती थी
वही एकदम वही बात, छोटे मशीन हो या बड़े मशीन हो, जैसे अभी तो मैं स्टील मेकिंग में काम करती हूँ, तो उसमें बहुत जैसे खुशी भी लगती है देखने में, इंटरेस्ट है, पर किंतु ये भी अच्छा लगता है कि देखो ये कितना एसेंशियल है दुनिया के लिए। सामान बनाना ये सब करना। तो हम लोग जब हमें ये देखते हैं कि देखो अगर आप बिल्डिंग बनाइए या कार बनाइए या फोन बनाइए जो भी चीज बनाइए उसमें ये मटेरियल मेटल्स बोलिए या प्लास्टिक्स बोलिए सब में कितना कितने सामानों की जरूरत है। तो मुझे ऑटोमेटिकली जो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि जो हम लोग इंडिया में ग्रो अप करके हमेशा देखते हैं कि एक कुछ चीज फेंकते नहीं है क्योंकि हर चीज को हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ये काम नहीं करे तो हम लोग इसका रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबका एक्सपीरियंस होता है
जी।
तो मुझे इंटरेस्ट उस तरह से हो गया कि कुछ चीज बनाओ या रिपेयर करो या यूज करो या किसी भी तरह वो सामान का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कभी नहीं जानी चाहिए। जो इंटरेस्ट बचपन में शुरू हुई वही इंटरेस्ट जैसे चलती गई हम लोग सब देखे हैं। जब हम लोग इंडिया में जहाँ पे भी रहते हैं अपना जूते बोलो या कपड़े बोलो या टोस्टर बोलो हर चीज को रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई अपने शहर में होता ही है।
बिल्कुल बिल्कुल हमारी जड़ों में अपने आप से ही था और वही आपने किया सस्टेनेबल मटेरियल के जो रिसर्च है आपकी कि एक चीज जो खराब हो गई है या जिसका अब उस प्रोडक्ट पे उसका अगर यूसेस नहीं है तो उसको किस तरह से हम और जगह पर यूज कर सकते हैं। और शायद इसी सब चीजों से ग्रीन स्टील की बात आई कि आप वर्क कर रही हैं तो वो क्या है जो आप ग्रीन स्टील के लिए यूज करती हैं?
हाँ तो ऐसा सोचिए देखो अभी स्टील बनाने के लिए लोग कोल यूज करते हैं नॉर्मली। हाँ. और अगर हमको डिकार्बोनाइजेशन करना है कोल को कम यूज करना है तो हम लोग किस तरह से स्टील बनाएंगे क्योंकि लोग तो इतने सालों से स्टील बना रहे हैं जिसमें ये
कोल की जरूरत है जी।
कोल की जरूरत है तो उसके लिए अल्टरनेटिव दूसरे मटेरियल्स भी सोचने चाहिए। तो ये प्रूव किया है कि देखो अगर आपको हाइड्रोजन डालना है स्टील बनाने के लिए ये हाइड्रोजन टायर्स में भी होती है एंड टायर्स की हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए यूज करने के लिए जो हम लोग ने टेक्निक डेवलप किया है जिस टेक्निक से हम लोग ये इंजेक्शन करके जिसको हम लोग का टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीमर इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और पिट ये टेक्नोलॉजी से हम लोग ने ये प्रूव किया है कि आप हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं टायर से और वो हाइड्रोजन स्टील मेकिंग में यूज हो सकता है और उससे स्टील बनाने की जो टेक्निक्स हम लोग ने प्रूव की है वो इंडस्ट्रीज भी अडॉप्ट कर सकती है ये टेक्निक। तो इसलिए ग्रीन स्टील बोला जा रहा है कि सबका जो गोल है दुनिया में कि हम लोग को कोल कम करना चाहिए और कोल को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहिए पर कैसे करें ये बड़ा सवाल है। अब बोलने के लिए तो भाई अच्छा है थ्योरी में देखो हम लोग को कोल नहीं यूज करना चाहिए प्रैक्टिस में हम लोग क्या क्या करना चाहिए सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं बट ओपिनियन एंड थॉट को प्रैक्टिकल रियलिटी में ट्रांसलेट करना चाहिए। हम लोग ये बोल सकते हैं देखो हम लोग को हेल्थी ईटिंग करना चाहिए अभी अगर मैं एनालॉजी उस हिसाब से लूं हेल्थी खाना खाना चाहिए पर उसको प्रैक्टिस में भी तो डालनी चाहिए। अभी हम लोग यही बोल रहे हैं कि देखो अगर प्लैनेट को हेल्दी बनाना हो तो हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन स्टील बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो इंडिया हो दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जो ये परस्यू कर रहे हैं ये ड्रीम जो है कि हम लोग को प्रूव करना है जो हम लोग प्रैक्टिस में प्रूव कर रहे हैं ये लेबोरेटरी वर्क साइंटिफिक स्टडी जो इतने सालों से हम लोग ने स्मार्ट सेंटर में प्रूव किया है साइंस हम लोग ने जो दिखाई है उसमें रबर टायर्स की जो यूज होती है वो टेक्नोलॉजी भी जो हम लोग ने अभी प्रूव की है उसमें हम लोग ने ये दिखाया है कि हाइड्रोजन जो टायर से रिलीज होता है वो क्लीन एंड ग्रीन उस हिसाब से हम लोग ग्रीन स्टील बना सकते हैं
जी। एक तो ग्रीन स्टील की बात है दूसरी और किस चीज के ऊपर काम चल रहा है और कितना आपको सपोर्ट मिलता है इन सब काम के लिए?
दूसरा जो बात हम लोग ये सस्टेनेबल कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं उसमें फोकस, जैसे आप देखिए प्लास्टिक्स कितना इम्पोर्टेंट इशू है, हब में जो हम लोग देख रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ से आती है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स में से आती है। अगर हम लोग ये प्लास्टिक्स को कनेक्ट करेंगे कि देखो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और हम लोग ये चॉइस बना सकते हैं एज कंज्यूमर्स कि देखो यू नो मैं अवॉइड कर सकती हूँ। जैसे आप बताइए छोटी छोटी चीजें हो, कटलरी हो या प्लेट्स हो, ये सब कितनी चीजें जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने जिंदगी में। हम लोग साइंस तो पढ़ सकते हैं कि देखो माइक्रोप्लास्टिक्स आ रहा है, ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है हम लोग के दुनिया में, हम लोग के जिंदगी में। तो एक हुआ ये छोटी छोटी कंज्यूमर आइटम्स, पर दूसरी भी जो हम लोग देख सकते हैं जिसकी टेक्नोलॉजिकली जरूरत होती है, तो हमारे प्रिंटर्स में भी है। अगर आप एक एग्जाम्पल लो, हाईटेक डिवाइस तो प्रिंटर भी हुई, तो उस ओल्ड प्रिंटर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं उससे। अभी यही बात हुई ना कि देखो फेंकना एक बात है, पर फेंकने से वो कहाँ जाता है, वो लैंडफिल में ही जाता है ना। तो इसलिए ये जो हम लोग सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं इंडस्ट्री के साथ पार्टनर करके, तो जो हम लोग ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पार्टनरशिप बनाई है इंडस्ट्री के साथ, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो सॉल्यूशंस है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, जैसे हमारे माइक्रो फैक्ट्रीज हैं, ये माइक्रो फैक्ट्रीज में आप प्लास्टिक जो प्रिंटर से आती है, एक एग्जांपल देखिए, आप उनको क्या रीमैन्युफैक्चर, क्या दूसरा बना सकते हैं ताकि ये प्रोडक्ट्स लैंडफिल में ना जाए। तो पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग का अप्रोच ये है कि हर आइटम जब एंड ऑफ लाइफ पहुंचता है तो एंड ऑफ लाइफ से लैंडफिल नहीं जानी चाहिए, किंतु इंस्टेड इट शुड गो टुवर्ड्स रीमैन्युफैक्चरिंग। सो हम लोग को कुछ दूसरा आइटम बनाने के लिए उस हिसाब से एनवायरमेंटली हम लोग ने सही चीज की है, हम लोग ने इकोनॉमिकली सही चीज की है, और हम लोग ने ये दिखाया है कि इकोनॉमी के लिए ये इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है।
जी,
जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं सिडनी में जो हम लोग ने सेटअप, रिन्यू आईटी ने माइक्रो फैक्ट्री स्टार्ट किया है, ये माइक्रो फैक्ट्री जिसमें हम लोग प्लास्टिक्स यू नो पुराने प्रिंटर्स वगैरह से हम लोग जो बना रहे हैं, ये प्लास्टिक फिलामेंट्स बना रहे हैं। ये प्लास्टिक फिलामेंट्स का ये फायदा हुआ कि उसको हम लोग फिर 3D प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। तो उसने हम लोग ने दिखाया है कि सबसे डिफिकल्ट प्लास्टिक भी हो, जैसे जो प्रिंटर्स में जाती है, ये डिफिकल्ट प्लास्टिक्स भी हम लोग रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये गोल होना चाहिए इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके, हम लोग ये दिखा सकते हैं कि देखो अल्टीमेटली हमारे कम्युनिटी में उसमें हम लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं, एनवायरमेंट के लिए केयर कर सकते हैं।
जी, इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। करने की जो बात है उसी के लिए ही आपको सम्मानित भी किया गया है।
थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। मुझे तो हमेशा बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस लगता है कि ऐसे साइंस और इंजीनियरिंग का जो रिकग्निशन होता है वो दुनिया के लिए, सब लोग जो इस टॉपिक में काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, ये सब लोगों का रिकग्निशन है कि ये जो काम है वेस्ट मैनेज करना दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल, Facebook या Instagram पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट। विभिन्न विषयों पर रोचक जानकारी भरे हमारे पॉडकास्ट सुने sbs.com.au/hindi पर। हिंदी पेज के लिए हमारे वेब पेज पर दाहिनी ओर हिंदी को चुने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।